युवा और विकास लीजिए इसके अंतर्गत प्रस्तुत है भीड़ से अलग। इसकी लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है समता बोरेकर। दोस्तों, शॉर्टकट के जमाने में आप लोग भी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में एक मूक प्रतिभागी बने अपनी राह तलाश रहे होंगे। अपने आदर्श व्यक्तित्व जैसा बनने की चाह और सफलता पाने का सपना कई युवाओं को अपने आदर्शों से समझौता करने को मजबूर कर देता है। अव्वल तो आजकल के युवा आदर्शों में विश्वास ही नहीं रखते, और दूसरे जो रखते भी हैं तो छोटे छोटे प्रलोभनों से ही पिघल जाते हैं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहती हूँ दोस्तों, जिन्होंने साबित किया कि ईमानदारी, पारदर्शिता व नैतिक मूल्यों के साथ भी व्यापार व्यवहार किया जा सकता है। जो लोग अपनी नाकामी का बहाना ये कहकर बनाते हैं कि पूंजी की कमी के कारण हम ये ना कर सके, उनके लिए भी ये व्यक्तित्व जीता जागता उदाहरण है कि निर्धन युवक भी ज्ञान को पूंजी बनाकर इंफोसिस टेक्नोलॉजीज जैसा न्यू जनरेशन हाईटेक उद्योग स्थापित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं श्री एन आर नारायण मूर्ति के बारे में ही बात कर रही हूँ। साथियों, एन आर नारायण मूर्ति आप में से कईयों के आदर्श हैं। वे एक मिसाल है जिनसे प्रेरणा ग्रहण कर आप अपने सपनों को ताकत दे सकते हैं। आज 2500 करोड़ रुपए की निजी संपदा के मालिक भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के निदेशक नारायण मूर्ति की परवरिश कैसी गरीबी में हुई, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके पिता स्वर्गीय नागाराव रामाराव नारायण मूर्ति, जो कि कर्नाटक में एक शिक्षक थे, 250 रुपए मासिक वेतन से 8 बच्चों का लालन पालन करते थे। इन 8ों में 5वें क्रम के नारायण मूर्ति स्कूल के टॉपर थे और उन्होंने IIT प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली थी और साथ ही छात्रवृत्ति भी प्राप्त कर ली थी, परंतु फिर भी वे IIT से ग्रेजुएट नहीं हो पाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि दोस्तों, छात्रवृत्ति शिक्षा सत्र समाप्त होने पर मिलनी थी और पिता की ऐसी हैसियत नहीं थी कि वे एक साल तक अपने एक पुत्र पर 100 रुपए हर माह खर्च कर सके। शिक्षक पिता ने अपना दर्द छुपाते हुए बेटे को सलाह दी कि प्रतिभा होगी तो स्थानीय कॉलेज में पढ़कर भी अपनी राह बना लोगे, और दोस्तों यही हुआ भी। मैसूर कॉलेज से नारायण मूर्ति ने सर्वोच्च अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक किया। दोस्तों, मैं से कई युवा साथियों को जानती हूँ जो अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर ध्यान देने के बजाय दूसरी बातों के बारे में ही सोचते रहते हैं और खुद को निराश और नकारात्मक बनाते रहते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मैं एक युवक रूपेश से रूबरू हुई जो IIM से MBA कर रहा है। वह घोर मानसिक तनाव में है और तनाव इतना बढ़ गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मैंने उससे बात की, उसे पूछा कि आखिर वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इतना परेशान किए हुए है, किस बात का टेंशन है। उसने बताया, मैं MBA का विद्यार्थी हूँ, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ता हूँ, लेकिन पापा मुझे बाइक नहीं दिलवा रहे। मेरे सभी दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, लड़कियां भी अपनी अपनी गाड़ियों से आती हैं, ऐसे में मुझे बड़ी हीन भावना महसूस होती है। कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता, दोस्तों से आंखें नहीं पिला पाता, घर वाले बात समझते ही नहीं, और ऐसे में मन करता है कि घर छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ दूं। दोस्तों, उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। आजकल के युवा आधुनिकता और दिखावे के रंग में डूबे हुए हैं। सोचिए, बस गाड़ी के न होने के कारण रूपेश ने क्या कुछ नहीं सोच लिया। ऐसी युवा पीढ़ी अपना लक्ष्य और भविष्य कैसे निर्मित कर सकेगी, जबकि ऊंचाई पर पहुंचने के लिए साधनों पर नहीं बल्कि लक्ष्य पर ध्यान देना होता है। दोस्तों, IIT कानपुर में MTech के अंतिम वर्ष में नारायण मूर्ति का चयन एयर इंडिया, टाटा समूह के टिस्को व टेल्को जैसी बहुप्रतिष्ठित कंपनियों में हुआ, मगर उन्होंने दूसरों से अलग राह चुनी। उन्होंने IIM अहमदाबाद से मात्र 800 रुपए मासिक वेतन की नौकरी पसंद की, क्योंकि दोस्तों उनकी नजर IIT टेक्नोलॉजी लैब पर थी, जहां वे अपने किताबी ज्ञान को ज्यादा धारदार बनाना चाहते थे। एक लालच और था, IIM में उन दिनों Hewlett पे कार्ड मनी कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही थी। यहीं पर नारायण मूर्ति को श्री कृष्णैया का साथ मिला, जिससे वे आज भी अपना परम सौभाग्य मानते हैं। यहां उन्होंने कृष्णैया के साथ मिलकर देश का पहला इंटरप्रेटर स्थापित किया। गुरु कृष्णैया अपने शिष्य से इतना प्रभावित थे कि उन्होंने उनका नाम एक फ्रेंच सॉफ्टवेयर कंपनी सेसा में भेजा, जो एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए प्रतिभावान प्रोग्रामर्स को खोज रही थी। इस प्रोजेक्ट की 18 सदस्यों की टीम के एक सदस्य बनकर नारायण पेरिस पहुंचे। यहाँ उन्होंने फ्रेंच सीखी, मगर दोस्तों जैसे कि मुसीबत कभी भी कहीं से भी आ जाती है, नारायण मूर्ति की कुंडली में भी ऐसा ही योग था। पेरिस की यात्रा के दौरान वे एक ऑस्ट्रेलियन लड़की से फ्रेंच में राजनीतिक मुद्दों पर बतिया रहे थे। दोनों की बातें सुनकर एक जर्मन यात्री ने उन्हें देशद्रोही समझ लिया और पुलिस को रिपोर्ट कर दी। बुल्गारिया में उन्हें 3 दिन जेल में रखा गया। गहन पूछताछ के बाद यह कहते हुए मुक्त किया कि मित्र देश के नागरिक होने से रिहा किए जा रहे हो, पर हमारा देश तत्काल छोड़ दो। दोस्तों, स्वदेश लौटने के बाद सन 1981 में नारायण मूर्ति ने 6 अन्य टेक्नोक्रेट्स प्रोफेशनल के साथ मिलकर इंफोसिस टेक्नोलॉजीज की स्थापना की। दोस्तों, इंफोसिस की स्थापना के लिए सन 1981 में प्रत्येक को 10,000 की पूंजी जुटाना थी और वो उनके लिए आसान नहीं थी। इंफोसिस के इन संस्थापकों ने पत्नियों से उधार लेकर यह प्रारंभिक पूंजी जुटाई। कर्ज से खरीदे गए नारायण मूर्ति के फ्लैट के कोने में मात्र 120 वर्ग फीट में इंफोसिस का जन्म हुआ। आज इंफोसिस जिस मुकाम पर है, वहां तक पहुंचने के लिए उसे कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ा। संघर्ष के इन 10 सालों में ऐसा भी मौका आया कि श्री मूर्ति को पत्नी के जेवर बेचकर अपने स्टाफ को वेतन देना पड़ा। सन 1990 में एक समय ऐसा आया जब इन मित्रों ने एक बार इंफोसिस को बेचने पर भी विचार किया, पर हर बार नारायण मूर्ति ने समझाया, सुरंग के दूसरे छोर पर हमेशा रोशनी होती है। और दोस्तों, नतीजा हम सबके सामने है। इंफोसिस टेक्नोलॉजीज ने आईटी और सॉफ्टवेयर उद्योग क्षेत्र में सारी दुनिया में भारत का परचम लहराया है और यह शेयर मार्केट की डार्लिंग कंपनी है। आज इसका टर्नओवर लगभग 10 बिलियन डॉलर के करीब है। सोचिए, यदि श्री नारायण मूर्ति इसी हीन भावना में रहते कि वे आईआईटी से ग्रेजुएशन नहीं कर पाए या फिर पैसों की कमी का बहाना बनाकर अपने कार्य को बीच में ही छोड़ देते, तो वे भी हम में से एक ही बनकर न रह जाते। श्रोता साथियों, हर व्यक्ति अपने काम की शुरुआत शून्य से ही करता है। यदि आप चाहते हैं कि आसमान छू ले, तो आपको उन तथ्यों पर गौर करना होगा जो कि उपलब्ध है, न कि उन अभावों को जो कि आपके पास उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, सपने देखना बुरी बात नहीं, मगर उन सपनों में डूबे रहना और बस ख्याली पुलाव ही पकाते रहना शेख चिल्लियों का काम है। एक विडंबना और भी है, मैंने देखा है कि युवा वर्ग संकोची है, उनका व्यवहार बड़ा विरोधाभासी है। जो सोचते हैं बोलते नहीं, डरते हैं कि सुनने वाले को बुरा न लग जाए। जो कहते हैं वो करते नहीं, क्योंकि सोचने लगते हैं कि ऐसा पहले किसने तो किया नहीं, फिर हम क्यों जोखिम उठाए। कुछ काम शुरू करते हैं तो बताते नहीं किसी को, सोचते हैं कि लोग बड़बोला कहने लगेंगे। युवा वर्ग ऐसे कई पशुपेश में जीता है जो हर कदम पर उनके विचारों को बाधित करता है और उनके विश्वास को डगमगाता रहता है। दोस्तों, हम में से कोई निर्धनता में नहीं जीना चाहता, पर हम अमीरों को कोसने से भी बाज नहीं आते। जो सफल है उस पर टीका टिप्पणी करना और उनके कामों में मीन मेख निकालना, उनकी आलोचना करना हम अपनी शान समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि दूसरों की आलोचना करके आप अपने अहम को संतुष्ट करने का ही प्रयास करते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं असल में आपकी अपनी असफलता पर झल्लाहट और झुंझलाहट को ही प्रकट करती है। दोस्तों, आप सभी ने वास्को डी गामा का नाम तो जरूर सुना होगा। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से अमेरिका की खोज की थी। उन्होंने जब अमेरिका की खोज की तो अच्छी प्रतिक्रियाओं से ज्यादा आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। खैर, वास्को के सम्मान में और उनकी उपलब्धि पर उनके देश में एक पार्टी का आयोजन किया गया। समारोह जब लोगों से खचाखच भर गया तो वास्को डी गामा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्या कोई ऐसा है जो अंडे को बिना किसी वस्तु की मदद के समतल धरातल पर सीधा खड़ा कर सकता है। सब लोग चुप हो गए। आखिर अंडे को सीधा खड़ा कैसे किया जा सकता है? वास्को ने सबको 10 मिनट का समय दिया। कोई आगे नहीं आया। उसके बाद वास्को ने अंडे को एक छोर से धीरे से टेबल पर मारा। दोस्तों, अंडा एक तरफ से थोड़ा सा ज्यादा गोलाई लिए होता है और उस ओर अंडे के बाहरी कवच के अंदर अंडे की एक झिल्ली और कवच के बीच थोड़ी सी दूरी होती है। बाहरी कवच के टूट जाने पर अंडा सीधा खड़ा हो गया। वास्को डी गामा ने जैसे ही ऐसा किया, लोगों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। उन्होंने सुना कि किसी ने कहा, अरे ये तो हम भी कर सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पर वास्को मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ आप सभी भी कर सकते थे, लेकिन वास्को डी गामा के बाद। दोस्तों आलोचना सभी को सुननी पड़ती है, यदि आप आलोचना से बच भी जाए तो खुद को दूसरों की आलोचना करते हुए पाएंगे। तो दोस्तों मेरा सुझाव तो ये है कि दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दें, बल्कि अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर खुश हो जाए। अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान स्थिर रखिए। अपने इसी गुण के कारण ही KM मापिल्लाई ने मद्रास रबर फैक्ट्री, जिसको हम सब MRF के नाम से जानते हैं, की स्थापना की और उसे देश की अग्रणी टायर फैक्ट्री बनाया। KM मापिल्लाई ने जीरो से यात्रा शुरू की थी और उनकी इस यात्रा में ऐसे कई पड़ाव हैं जो सीख देते हैं कि स्वप्नदर्शी यदि कर्मयोगी हो तो जरूर विजेता बनेगा, बस लक्ष्य से निगाहें हटनी नहीं चाहिए। इनका व्यक्तित्व संदेश देता है दोस्तों कि जो काम शुरू में बहुत छोटा होता है, उसे ही अगर लगन व धुन से संचालित किया जाए और लक्ष्य पे निगाहें टिकी रहे तो वह रिलायंस और MRF जैसा बड़ा हो सकता है। मापिल्लाई ने सन 1946 में बिना परिवार की मदद लिए घर में ही गुब्बारे बनाने का कुटीर उद्योग लगाया था। यह वह समय था दोस्तों जब देश में जापानी गुब्बारे नए नए ही आए थे। मापिल्लाई और उनकी पत्नी कुंजम्मा अपने छोटे से कमरे में लेटेक्स रसायन से गुब्बारे बनाते थे और मापिल्लाई घर घर जाकर ये गुब्बारे बेचते थे। वह छोटा कारोबार ऐसा चला कि घर में ही रोज हजार गुब्बारे बनने लगे। कारोबार को आगे बढ़ाते हुए मापिल्लाई ने लेटेक्स से ही रबर के खिलौने भी बनाने शुरू कर दिए। थोड़ा पैसा इकट्ठा हुआ तो मापिल्लाई ने सन 1951 में रीट्रेडिंग कंपाउंड बनाना शुरू किया। इस मार्केट में मापिल्लाई का सामना डनलप जैसी बहुप्रतिष्ठित कंपनी से हुआ। डनलप ने अपने इस अदनी से प्रतिस्पर्धी को मार्केट से बाहर करने की नीयत से प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी और लागत से भी कम मूल्य पर उत्पाद बेचना शुरू कर दिए। दोस्तों आखिर मापिल्लाई को सरकार से शिकायत करनी पड़ी। सरकारी हस्तक्षेप से मापिल्लाई की नवजात इकाई मद्रास रबर फैक्ट्री बच तो गई, मगर उनके मन में यह घटना फास बनकर छुप गई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति उनके मन में गहरा रोष समा गया और डनलप के प्रति तो यह गुस्सा इतना प्रचंड था कि वे टायर उद्योग में प्रवेश करने की सोचने लगे, जो डनलप का सबसे बड़ा कारोबार था। मगर दोस्तों बड़ी पूंजी और तकनीकी के बगैर यह संभव न था। मापिल्लाई को बैलगाड़ी के बिना ट्यूब के ठोस रबर टायर बनाकर ही संतोष करना पड़ा। मगर दोस्तों उन्होंने हार नहीं मानी और प्रयासों में जुटे रहे। सन 1961 में उन्हें अपने सपने को साकार करने का मौका मिला। मेंसफील्ड टायर एंड रबर कंपनी मापिल्लाई की मदद करने को तैयार हो गई। उनकी मदद से मापिल्लाई ने मेंसफील्ड कंपनी से तकनीकी अनुबंध किया और MRF टायर मार्केट में आए। निजी पूंजी की कमी और सरकार से कोई संरक्षण न मिल पाने के कारण मापिल्लाई कई वर्षों तक इस उद्योग के बहुत छोटे खिलाड़ी बने रहे, मगर आज MRF टायर्स को सारी दुनिया जानती है। दोस्तों 3 मार्च 2003 को जब KM मापिल्लाई ने दुनिया को अलविदा कहा, तब अपने पुत्र KM मामेन को 2500 करोड़ रुपए का MRF ब्रांड विरासत में दे गए। दोस्तों एक बात और जरूर बताऊंगी कि MRF जो ट्रैक्टर से लेकर साइकिल तक यानी हर किस्म के टायर बनाती है का किसी विदेशी कंपनी से कोई गठबंधन नहीं है। सन 1996 में फॉर ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू के पाठक सर्वे में MRF को एशिया की अग्रणी 200 कंपनियों में शामिल किया गया। दोस्तों आज MRF टायर ऐसा ब्रांड है जो 4 दशकों से बिना पंक्चर हुए सड़कों पर दौड़ रहा है। युवा साथियों, चुनौतियों और मुश्किलों का सामना करते हुए जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वो ही इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में अपना अलग मुकाम बना पाता है। अभी आप पर है दोस्तों कि आपको दुनिया की भीड़ में गुम हो जाना है या किस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनानी है। मैं आज आपके लिए ये प्रश्न छोड़े जा रही हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।